శ్రీమద్భాగవతం ఫోర్త్ క్యాంటో 14 చాప్టర్ టెక్స్ట్ నెంబర్ 30. ఇతి తే సత్కృతాస్తేన ద్విజాః పండితమానినా భగ్నాయాం భవ్యయా చ భవ్యయాజ్ఞాం తస్మై విదురచక్రుదుః ఇతి తే అసత్కృతాస్తేన ద్విజాః పండితమానినా భగ్నాయాం భవ్యయాం చ తస్మై విదురచక్రుదుః ఇతి తే సత్కృతాస్తేన ద్విజాః పండితమానినా భగ్నాయాం భవ్యయాచ్యాయాం తస్మై విదురచక్రుదుః. మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్ బెస్ట్ బ్యాంక్రీ శ్రీ భక్తివేదన్ స్వామి ప్రభుపా శ్రీ ప్రభుపాకి. మై డియర్ విదుర, ఆల్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అన్ టు యూ. ద ఫోలిష్ కింగ్ హూ థాట్ హిమ్సెల్ఫ్ వెరీ లర్నడ్ దస్ ఇన్సల్టెడ్ ద గ్రేట్ సేజెస్ అండ్ ద సేజెస్ బీయింగ్ బ్రోకన్ హార్టెడ్ బై ద కింగ్స్ వర్డ్స్ బికేమ్ వెరీ యాంగ్రీ అట్ హెమ్. आप सबको हम रविवार के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं. आज हम सुबह पढ़ रहे हैं महाराज वेण राजा के संबंध में. ये श्लोक में बताया गया है कि वेण राजा के बर्ताव से ब्राह्मण लोग उत्तेजित हो गए और बहुत क्रोधित हो गए, ऐसे बताया गया है इधर. तो हमने ये श्लोक एक खास करके ये कारण से ली क्योंकि प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में. ब्राह्मण लोग तो पंडित होते हैं, शास्त्र में पढ़े लिखे होते हैं, वो कैसे उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए इस तरह. सारे शास्त्र में अनेक उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कोई कोई ऋषि मुनि नहीं तो कोई ब्राह्मण बहुत उत्तेजित होकर क्रोध से कुछ श्राप दे देते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को कुछ असुर का शरीर मिलता है, किसी को पेड़ का शरीर मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कैसे नलकुर मणिग्रीव को पेड़ का शरीर प्राप्त हुआ है ना, लेकिन अंत में उनको वो लाभदायक हो गया वो, क्योंकि भगवान कृष्ण की दर्शन प्राप्त हुई और वो भगवधाम लौट गए वो। इस तरह अगस्त्य मुनि ने श्राप दी इंद्रदुम्न राजा को क्रोधित होकर, लेकिन उनको अगले जन्म में गजेंद्र की शरीर प्राप्त हुई और उसके बाद वो भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ उनको। तो इस तरह बताया गया कि ये सब ब्राह्मण का संग जो है, जिन्होंने वेण को राजा बनाया था, वो खुद उसके ऊपर क्रोधित हो गए ऐसे। तो हम आज के इस सुबह के सत्र में हम ये बात समझना चाहेंगे, खास करके भारतवासी जो होते हैं, भारत में साधु साधु महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि लोगों के बारे में लोगों के मन में एक तरह का इमेज बना है, लेकिन वो इमेज कितना गलत है हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए लोग सोचते हैं एक शुद्ध भक्त का मतलब है वो शीत उष्ण मान अपमान सुख दुख ये सबसे परे होना चाहिए और इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत के लोग अनेक लोग सोचते हैं साधु महात्मा मतलब बहुत लंबा दाढ़ी होना चाहिए उसका है, और ऐसे शांति से बैठा है आंख बंद करके है, ऐसे हाथ से आने वाले जाने वाले लोगों को आशीर्वाद देता है, वो साधु महात्मा इतने बड़े हैं कुछ बोलते नहीं है मुँह से, ऐसे लोग सोचते हैं। वो क्यों बोलते नहीं है कुछ मालूम नहीं है उनको, लेकिन लोगों का ऐसे सोचना होता है। एक बार प्रभुपाद जैसे ही प्रवचन दे रहे थे तो बीच में एक बच्चा रो रहा था, वो चिल्ला रहा था बार बार, तो प्रभुपाद जी माँ को बोल रहे थे बच्चे को बाहर लेके जाओ, ऐसे हाथ दिखा रहे थे, तो दो तीन बार बोला प्रभुपाद जी ने प्रवचन के बीच में। अंत में माँ बच्चे को लेके गई बाहर, तो प्रवचन के एंड में एक युवक आया प्रभुपाद के सामने, उसने प्रश्न पूछा अंत में, स्वामी जी आपने वो बच्चे को बाहर लेके जाने के लिए क्यों बोला, क्या आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आपके प्रवचन देने में, ऐसे पूछा। तो उसका पूछने का मतलब प्रभु तुरंत समझ गए, उसका पूछने का मतलब क्या था, आप तो साधु हो किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा शांत रहना चाहिए आपको। तो प्रभु ने बोला मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं तुम्हारे लिए डिस्टर्बेंस है, इसलिए मैंने उसको बाहर लेके जाने के लिए बोला। तो आदमी बहुत खुश हो गया, वो चला गया वो। तो अनेक लोग सोचते हैं कि ऐसे साधु का उनका मन में एक आइडिया होता है कि साधु को ऐसे होना चाहिए, लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वैष्णव साधु जो होते हैं वो भी रोते हैं। किस लिए रोते हैं? कृष्ण के लिए रोते हैं, वो भी हंसते हैं कृष्ण के संबंधित चीज़ों के लिए। तो सुख दुख मान अपमान ये सब उनके लिए इसको नकारते नहीं है, लेकिन कृष्ण से संबंधित वो उसको स्वीकारते हैं। जैसे प्रभु जी जब अमेरिका में लैंड हुए उस समय सैकड़ों लोग नीचे गिरकर दंडवत प्रणाम किया प्रभु जी को, तो एक स्टाफ रिपोर्टर ने पूछा प्रभु जी को, स्वामी जी ऐसे ही आपको आदर देते हैं सब लोग कहीं भी जाते हो ऐसे? तो प्रभु ने बोला मैं परवाह नहीं करता लोग मुझे कितना आदर देते हैं, मैं सिर्फ देखता हूँ कि लोग मेरे मिशन को कैसे स्वीकारते हैं, मैं वो देखता हूँ, ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे जब हम भौतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त को, तभी बहुत बड़ा अपराध हम कर बैठ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पद बताते हैं, दृष्टि स्वभाव जनित वपुष्च दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुद फेन पंकैर् ब्रह्मद्रवपम अपगच्छति नीरधर्मै। वो बताते हैं कि गंगा जो है उसमें कभी कभी विष्टा, कभी कभी ऐसे लकड़ियाँ ऐसे वो तैरते हैं, लेकिन गंगा का पवित्रता कभी कम नहीं होता। इस तरह उसमें बताया गया है कि कभी कभी एक भगवान के शुद्ध भक्त देखने में काले हो सकते हैं, देखने में छोटे हो सकते हैं, देखने में मोटे हो सकते हैं, उनके शरीर में कभी कुछ व्याधि भी हो सकता है। इन चीज़ों को देख कर किसी को दोष ढूंढना नहीं चाहिए उनके शरीर को देख कर। इस तरह साधु के बर्ताव भी जो होता है उसको देख कर भी हमारे मन के अंदर गलतफहमियाँ आ सकता है। भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं कि 6 तरह के भौतिकवादी होते हैं इस दुनिया में। वो बताते हैं तो पहले बोलते हैं कुछ लोग हैं जो पहला श्रेणी का बोलते हैं भौतिकवादी क्या है, वो उसके अंदर थोड़ा भी विश्वास नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के नियमों के ऊपर, कानून के ऊपर विश्वास नहीं है, पूरा नास्तिक व्यक्ति है। दूसरा है वो मॉरलिस्ट है। मॉरलिस्ट का मतलब नैतिकतावादी वो नैतिकता को पालन करता है लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे हमारे भारत के एक महान नेता है, हमेशा अपने हाथ में वो भगवद्गीता लेकर घूमते हैं। वो आजकल तो राजनीतिक लोगों का एक फैशन बन गया भगवद्गीता को हाथ में लेके जाना, तो वो भी लेके जाते थे। तो अहिंसा का प्रचार करते थे वो, अहिंसा के संबंध में। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवद्गीता भगवान ने क्यों बोला, अर्जुन को लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बोला। और ये राजनीतिक व्यक्ति क्या करता है, हाथ में उठाकर वो बोलता है कि मैं अहिंसावादी हूँ, लेकिन भगवान ने खुद बोला अर्जुन को, अर्जुन मारो, तुम धर्म युद्ध करो। इस तरह धर्म को स्थापन करने के लिए करोड़ों योद्धाओं को मार डाला उन्होंने युद्ध भूमि में। तो लेकिन ये जो मॉरलिस्ट होते हैं, इनका जो नैतिकतावादी लोग सोचते हैं कि अगर धर्म जितना हद तक ये नैतिकता के साथ साथ चलता है उतना हम मानेंगे उसको, उससे ज़्यादा नहीं, अपनी नैतिकता को उसके ऊपर डालते हैं धर्म के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि अगर कृष्ण ऐसे गोपियों के साथ नाचा है तो मैं ऐसे, मुझे हिंदू कहने के लिए मैं बहुत बुरा मानता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने कुछ। आई फील अशेम टू कॉल माई सेल्फ हिंदू इफ हिंदू लॉर्ड हैज डांस्ड विद सो मेनी गोपीज, ऐसे एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति हमारे भारत के, उन्होंने बोला ऐसे। इससे समझ में आता है कि उनको धर्म कितना हद तक मालूम है, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से धर्म को जो धीर पुरुष होते हैं उनके कानों से, उनके मुखों से सुना नहीं है। इति शुष्कम धीराणाम ये नस्तत विचक्षिरे, ऐसा बोला गया। तो मॉरलिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ नैतिकता को पालन करते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले है नास्तिक है, दूसरा है नैतिकतावादी है, तीसरा व्यक्ति है जो वो बोलता है कि धर्म अच्छा है। क्यों? धर्म को पालन करने से इस दुनिया में नैतिकता बढ़ता है। वो सोचता है कि भगवान कुछ नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म के लोग जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, नैतिकता को पालन करते हैं, इसलिए क्या है धर्म अच्छा है, अपना लो, ऐसे अपनाता हो। ये तीसरा श्रेणी का व्यक्ति है ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका भी नैतिकता चीज़ ही सबसे ऊपर है, धर्म ऊपर नहीं है इसको। और चौथा व्यक्ति है जो इम्पर्सनलिस्ट है। ये इम्पर्सनलिस्ट का मतलब है निराकारवादी है। ये लोग सोचते हैं कि परम सत्य जो है निराकार है, लेकिन भक्ति करना, गाना, नाचना, भजन करना ये भी अच्छा है। क्यों? ये करने से हम ऊपर उठ सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं बंगाल गया था, एक बूढ़े आदमी से मिला, वो 80 से ऊपर था उसका उम्र, तो उसके घर में हम गए थे। तो किसी ने बोला मुझे, ये भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, ये भी कीर्तन वगैरह करते हैं, ऐसे मुझे परिचय कराया। तो हम जब वार्तालाप चल रहा था हमारे बीच में, मैंने उसको पूछा आप क्या नाम जप करते हैं, हम नाम जप करते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है। उसने बोला चैतन्य पद शंकर मत, ऐसे बोला उसने। वो बोला कि हम चैतन्य का पद अच्छा लगता है हमें, क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है, गाते हैं नाचते हैं और आसानी से मन और इंद्रियों को संयम कर लेते हैं, इसलिए मैं पसंद करता हूँ ये मार्ग, ये बहुत आनंद का मार्ग है। लेकिन हमारा उनका मत क्या था अंत में, मृत्यु के बाद हम निराकार में लीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, ऐसे उनका मत था। चैतन्य मत शंकर पथ ऐसे खतरनाक लोग हैं। तो ये ऐसे निराकारवादी हैं। तो और एक श्रेणी के लोग हैं जो ये भक्ति और ये सब चीज़ों को वो मानते हैं सिर्फ भौतिक सुख के लिए। उस इसमें ये मार्ग से जो भी भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है उसको स्वीकारते हैं। और लास्ट में उनको बोलते हैं पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब क्या है, वो अनेक देवताओं को समान मानते हैं। वो बोलते हैं तुम शिव जी की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, सब कुछ एक ही है, यतो मा ततो पत, सब कुछ एक ही है, ऐसे वो बोलते हैं। तो जब दुर्गा पूजा का सीजन आएगा वो दुर्गा की पूजा करेंगे, अब गणेश की पूजा के समय गणेश की पूजा करेंगे, कृष्ण के जन्माष्टमी आएगा, इधर भीड़ बहुत भीड़ आता है, कितने लोग आते हैं जन्माष्टमी के लिए, 50,000-60,000 लोग आते हैं। अभी किधर गए, संडे को क्यों नहीं आते, क्यों? क्योंकि वो सब देवताओं को एक समान मानते हैं ऐसे, जिसके कारण उनको एकाग्रत चित्त के साथ शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग। ये छह तरह के भौतिकतावाद के बारे में भौतिकतावाद ऐसे बताते हैं। तो ये लोग जो हैं अपने को हिंदू कहते हैं, हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उनका श्लोक है, गर्व से अपने को हिंदू कहलाते हैं, कहते हैं, बहुत गर्व करते हैं, लेकिन इनको परम सत्य के बारे में मालूम नहीं है सही ढंग से, जो भगवान भगवत में बताते हैं। इसलिए जब ये वैष्णव साधु को ये लोग देखते हैं, इनको अनेक बार गलतफहमी हो जाता है। तो ऐसे साधु के साधारण बर्ताव को देखकर हमें ये गलतफहमी नहीं करना चाहिए, गलत मार्ग में नहीं फंसना चाहिए, कि मूर्खता से हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये भी साधारण व्यक्ति है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग प्रभुपाद के पास आते थे, भारत के अनेक वृद्ध लोग आते थे प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पास आते हैं और अपने अपने तथ्य को बताते हैं, उनको जो फिलॉसफी मालूम है उसको बोलते हैं, और जब प्रभुपाद जी बोलते अगर स्वामी जी मानते हैं तो ये अच्छे स्वामी जी हैं, अगर मेरे फिलॉसफी को नहीं मानते हैं तो अच्छे नहीं है, ये उनका सोचना है, इसे प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों को प्रभुपाद जी मिलते थे। तो एक बार ऐसे मॉरिशियस में थे प्रभुपाद जी, तो मॉरिशियस के न्यूज़ वीकली ऐसे हफ्ते में निकालते थे एक न्यूज़पेपर, उसके एक एडिटर आया था प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी के साथ वो बात कर रहा था, उसने बोला प्रभुपाद जी को, स्वामी जी मैंने सुना कि भगवान खुद आते हैं इस दुनिया में, जैसे कृष्ण आते हैं ये भगवद्गीता की शिक्षा देने के लिए, और मैंने ये भी सुना कि अर्जुन ने भगवान के समक्ष खड़े होकर सारे भगवद्गीता सुना, अर्जुन सुनने के बाद अर्जुन को दिव्य ज्ञान जागृत हो गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतना अर्जुन दिव्य ज्ञान सुनने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, उसका साक्षात्कार होने के बाद, फिर भी अर्जुन क्यों इस तरह मूर्ख बन जाते हैं, ऐसे उन्होंने पूछा। प्रभुपाद ने पूछा उनको, कौन किस मूर्ख के बारे में तुम बोल रहे हो, जो व्यक्ति ने दिव्य ज्ञान सुना है वो कभी मूर्ख नहीं बन सकता है, ऐसे प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि दिव्य ज्ञान अगर सुना है, साक्षात्कार किया है, तो व्यक्ति कभी भी वो मूर्ख नहीं बन सकता है। तो वो व्यक्ति बता रहा था, प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे बोलना मूर्खता है, ऐसे बोला प्रभुपाद ने, तुम जब भी बोल रहे हो वो मूर्खता है। तो वो व्यक्ति बोल रहा था प्रभुपाद जी को, नहीं नहीं स्वामी जी मैं स्पष्ट आपको समझाता हूँ, उसने बोला कि मैंने बोला भगवद्गीता के अंत में अर्जुन बोलता है भगवान को, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरा स्मृति आ गया, और आपके प्रसाद के द्वारा मैं संतुष्ट हो गया। इस तरह अर्जुन बहुत संतुष्ट हो गया, शांत हो गया। लेकिन मैंने सुना कि कुरुक्षेत्र युद्ध में उसका बेटा जाभिमन्यु का मृत्यु हो गया। जब अर्जुन ने सुना वो अचानक वो विचलित हो गया, वो रो पड़ा और तुरंत उसने शपथ करने लगा कि मैं अभी आग जलाकर आग के अंदर प्रवेश करूंगा। इस तरह अर्जुन क्यों मोहित हो गया? तो ये भगवद्गीता का ज्ञान सुनने का क्या मतलब है? इस तरह पहले तो भगवद्गीता का ज्ञान सुनने के बाद बोलता है कि मैं बुद्धिमान बन गया हूँ, उसके बाद इस तरह रो रहा है, ये क्या है? इस तरह ये मूर्खता नहीं क्या? इसे पूछा उसने। तो प्रभुपाद ने बोला, जवाब के रूप में प्रभुपाद ने समझाया उसको, देखो इस दुनिया में सब लोगों को मालूम है भगवद्गीता के श्लोक, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आप शरीर को मारो लेकिन आत्मा मरता नहीं, आत्मा को कोई काट नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, भिगा नहीं सकते हैं, ये सब मालूम है सबको, हमने फिलॉसफी भी पढ़ा है, मालूम है। लेकिन अगर कोई बहुत निकट रिश्तेदार कोई चले जाते हैं तो तुरंत हम रो पड़ते हैं, ये तो स्वाभाविक मनुष्य का स्थिति है। लेकिन देखो अर्जुन का विजय क्या है, वो तो कुछ समय के लिए वो विचलित हो गया लेकिन तुरंत वो भगवान के आदेश को लेकर वो युद्ध भूमि में प्रवेश करके युद्ध शुरू कर दिया। तो भगवान के वचन को, भगवान के आदेश को उसने कभी तोड़ा नहीं, ये अर्जुन का विजय है। हालांकि वो कुछ समय कुछ क्षणों के लिए विचलित हुआ लेकिन भगवान के इंस्ट्रक्शन आदेश को उसने क्या किया, पालन किया वो। इसलिए उसको तुमको उससे ही देखना चाहिए, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। तो प्रभुज ने बताया, Arjuna did not act against the will of the Lord. That is his victory. Temporarily he might have been disturbed when his son was killed. That's a different thing. But that does not mean he stopped his work. So Arjuna did not give up his determination and resolution to follow the order of Krishna. So Prabhuji bolte hain ki bhakta ka lakshan hai, jitna bhi vichalit karne wale paristhiti aur ghatna uske jivan mein aaye, कभी भी वो भगवान के पद कमलों को छोड़ेंगे नहीं, यही भक्त का लक्षण है। ऐसे बोला प्रभुपाद ने, ऐसा नहीं कि भक्त कभी विचलित नहीं हो सकता, विचलित भी होगा लेकिन भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह प्रभुपाद जी भक्त का असली लक्षण बताते हैं। तो भक्त भी कभी कभी परिस्थितियों से विचलित हो सकता है लेकिन वो भगवान का आश्रय लेता है। जैसे हम देखते हैं उत्तरा को जब पता चला कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने जो चलाया वो ब्रह्मास्त्र से उसके अंतिम शिशु जो है पांडव वंश में वो मरने वाला है, उसके योनि में जो था, तो अपने जान को भी बचाने की इच्छा नहीं थी उत्तरा को। उत्तरा ने बोला भगवान को, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस बच्चे को आप बचाओ। ऐसे वो रो पड़ी ऐसे, तो भगवान ने बचाया ऐसे। तो ऐसे परिस्थितियों में भक्त लोग भगवान के आश्रय लेते हैं। जैसे जब इंद्र ने बहुत जोरदार बारिश भेजा था तभी ब्रजवासियाँ सब भगवान कृष्ण के आश्रय लिया है। ऐसे बताया जाता है गाय अपने बछड़ों को बछड़ों के साथ साथ आए भगवान के पास आश्रय लेने के लिए हैं। तो भगवान के भक्त लोग कठिन परिस्थिति में ऐसे कभी रो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं लेकिन भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन भगवान के पद कमलों को छोड़ते नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रभुपाद ने इस व्यक्ति के अपराधमय जो भावना है उसको वो बोलने के पहले से समझ लिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने समझ गया कि ये अर्जुन के ऊपर दोष दे रहा है ये व्यक्ति। अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त है वो समझ गया, इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारे प्रश्न मूर्ख प्रश्न है, ऐसे बोला प्रभुपाद ने उसको, तुम्हारे प्रश्न ही मूर्ख है। तो भगवद्गीता में एक श्लोक आता है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भात् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् भवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसे भगवान बताते हैं कि मेरे जो भक्त जो है वो बताते हैं कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम, अगर अर्जुन का मोहित होना अगर हम एक उसको दुराचार मानते हैं, क्योंकि भगवद्गीता पहले उसने सुना उसके बाद इस तरह वो मोहित हो गया हूँ। अगर मैं हम उसको दुराचार भी माने, भगवान बोलते हैं कि उसके बाद भी वो मेरा भक्त जो है वो साधु ही है, ऐसे बताते हैं। अपिचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग बोलते हैं। अनन्य भाग का मतलब है मेरे भक्त अनन्य भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसे बताते हैं। तो हम सबके लिए इससे बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि हमारे हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियाँ आते हैं जो हमारे मन को विचलित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति को भक्त को भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, ये भक्त का लक्षण है। और भगवान बताते हैं अर्जुन को उस श्लोक में कि मेरे भक्त हमेशा भक्ति में स्थित रहता है, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसे गलती के बाद भी, ऐसे भगवान बताते हैं। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में बताते हैं कि कोई पूछ सकते हैं कि ऐसे भक्त ने अगर गलती किया तो उसको कैसे हम साधु मान सकते हैं, ऐसे अर्जुन पूछते हैं, ये दुनिया के लोग तो मानेंगे नहीं उसको। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम बहुत बड़ा ड्रम लेके जाओ, हाँ सब तरह के वाद्य लेके जाओ और जाकर बजाओ और जोर से बताओ सारे दुनिया को, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसका मतलब है मेरे भक्त का भक्ति का कभी विनाश नहीं होता, हमेशा वो भक्त रहता है, इस तरह भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो प्रभुपाद जी कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं थे भक्तों के ऊपर दोष देने के लिए। वो जितना भी नवसिखिया भक्त हो, एक बार ऐसे एक माता जी थी जिन्होंने देखा प्रभुपाद जी के शिष्य मार्केट में किताब वितरण कर रहे थे, करते समय किसी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि हम फिलासफी जब सत्य बताते हैं लोग कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, तो ऐसे हो गया कुछ है? तो माता जी ने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा कि स्वामी जी आपके संस्था के लोग तो अच्छा करते हैं, किताब वगैरह वितरण करते हैं, लेकिन आपके शिष्यों को अच्छा ट्रेनिंग दीजिए, उनको क्रोध नहीं आना चाहिए है। इस तरह उन्होंने एक लेटर लिखा, तो आप पढ़ेंगे उसके बारे में, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान किताब में है वो लेटर। तो माता जी ने लेटर लिखा, तो प्रभुपाद जी ने उनको वापस रिप्लाई लिखा लेटर। वो रिप्लाई में लिखा प्रभुपाद जी ने, ठीक है आपने जो बोला वो सही है, लेकिन एक बात समझो, वो ये लोगों ने अपने जीवन दिया है भगवान के सेवा के लिए, ये भगवान के प्रचार करने के लिए है, और इनको सत्य भी बताना चाहिए लोगों को, सत्य सत्य सही चीज़ जो है उसको बताना चाहिए, इसलिए आप उसको समझने के लिए आप प्रयत्न करो, ऐसे प्रभुपाद ने लेटर लिखा उनको। क्योंकि जब हम कभी 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 हम सत्य को बताते हैं लोग क्रोधित हो जाते हैं। एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी को विनती किया था ये गीता समिति के लोगों ने, प्रभुपाद जी को इन्विटेशन दिया था, उन्होंने एक गीता जयंती का महोत्सव था, एक हफ्ते का था वो, एक हफ्ते का मना रहे थे गीता जयंती महामहोत्सव। तो प्रभुपाद जी भी जाकर ठहरे थे हरिद्वार में, तो उस समय उन्होंने देखा कि एक दो दिन ठहरे प्रभुपाद जी उधर, तो दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद जी बात कर रहे थे, कुछ गेस्ट कुछ मेहमान लोग आए थे उधर उसके लिए, उनके साथ प्रभुपाद जी बात कर रहे थे कि ये क्या नाम दिया है इन्होंने, गीता समिति ऐसे नाम दिया है, नाम तो गीता समिति है, गीता को बोलने वाला व्यक्ति कौन है, भगवान कृष्ण, उन्होंने गाया है ये भगवद गीता, लेकिन उनका तस्वीर कहीं नहीं है। उन्होंने बोला कि ये स्टेज में देखो कहीं भी आप देखते नहीं कि कृष्ण का राम का किसी का तस्वीर नहीं है, ये क्या गीता समिति है। तो किसी व्यक्ति ने बोला, नहीं स्वामी जी हमने एक दीप जलाया है, ऐसे बोला। प्रभु ने बोला, किधर बोला है भगवद गीता में कि मेरे लिए तुम सिर्फ दीप जलाओ मेरे तस्वीर के बदले। प्रभु ने बोला कि देखो किसी राजनीतिक मीटिंग में जाते हो तो उधर गांधी नेहरू का फोटो रहता है उधर, है ना, किसी भी मीटिंग में जाओ क्या सिर्फ दीप जलाते हैं उधर, उधर क्यों फोटो रहते हैं। तो प्रभु ने बोला कि भगवान कृष्ण ने गीता बोला है, उनका फोटो आपने क्यों नहीं रखा है, ऐसे डिमांड किया। तो वो लोगों ने बोला कि नहीं नहीं स्वामी जी हम निरंकार निराकार को हम मानते हैं, हम निराकार उपासक हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि किधर बोला है भगवान ने भगवद गीता में कि तुम निराकार उपासक बनो, भगवान तो बोलते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो मन में। तो प्रभुपाद ने बोला देखो इस तरह की गीता के नाम पर बहुत गलत फहमियाँ लोग फैला रहे हैं, इस गलत फहमियों को खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे बोला प्रभुपाद ने, इसलिए मैंने भगवद गीता यथारूप लिखा मैंने, ऐसे प्रभुपाद ने बोला। तो गेस्ट पूछने लगा प्रभुपाद जी को, स्वामी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों ने गलती वगैरह किया है, कौन गलती किया है, ऐसे उसने डिमांड किया। तो प्रभुपाद ने बोला, डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है राजनीति का, उसने लिखा है भगवद गीता का तात्पर्य, तो उसमें वो लिखता है, भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं ऐसे कि अर्जुन मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, इस तरह तुम करते करते मेरे पास आ जाओगे। तो राधा कृष्ण क्या लिखते हैं उसके तात्पर्य में, तो आपको भगवान कृष्ण की शरण जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण के अंदर जो ज्योति है उसकी शरण जाने के लिए प्रयत्न करो, बस ऐसे वो लिखते हैं। तो प्रभा जी ने बोला, देखकर देखो ये कितना बड़ा गलत है, भगवान ने कहीं भी भक्त में नहीं बोला है कि मेरा शरण मत जाओ, मेरे अंदर जो ज्योति उसका शरण जाओ, ऐसे भगवान ने कभी बोला नहीं है। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण और उनके शरीर में फर्क नहीं है, तो जैसे हम लोगों का शरीर और आत्मा में फर्क है, लेकिन कृष्ण का शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने स्वयं रूप के साथ आते हैं, जैसे बताते हैं वो श्लोक में, अजोपि सन्न अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा बताते हैं मेरा शरीर अव्यय है, अव्यय का मतलब है जो नश्वर नहीं है। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामवष्ठा संभवामी युगे युगे। वो बताते हैं भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, मैं सब भूतों का मैं ईश्वर हूँ, भगवान ऐसे बताते हैं। कोई बोल सकता है कि मैं भी आ जाऊँ, भगवान भी आ जाए, आई एम अनबॉर्न, लॉर्ड इज अनबॉर्न। अजोपि सन् अव्यय आत्मा, मेरा भी आत्मा अव्यय है, भगवान का भी अव्यय है, लेकिन भगवान बताते हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं सब जीवों का मैं कौन हूँ, मालिक हूँ, ऐसे बताते हैं। और बोलते हैं कि संभवामी आत्ममायया, मेरे ही दिव्य शरीर के साथ मैं इस दुनिया में आता हूँ, अवतार अवतरित होता हूँ और मैं अपने स्वधाम लौट जाता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। तो प्रभु जी बताते, देखो कैसे लोग अपने अपने मनगढ़ंत चीज़ों को डालते हैं। आप लोग पढ़ेंगे अगर डॉक्टर राधाकृष्ण के, आज भी पढ़ेंगे उसके कमेंट्री को, इंट्रोडक्शन दिया है उसमें, उसने इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंट्रोडक्शन में षडविधा शरणागति ऐसे करके छह तरह के जो शरणागति का सीढ़ियाँ हैं उसके बारे में राधा कृष्ण ने बताया है। वो बताते हैं अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षसतीति विश्वासो, गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षडविधा शरणागति। तो छह तरह की शरणागति की विधि है जो भक्ति मार्ग में है, उसको वो ही व्यक्ति ने किधर दिया है, इंट्रोडक्शन में दिया है। तो प्रभु जी बोलते हैं इंट्रोडक्शन में वो दिया भक्ति के बारे में, और इधर आकर बोलता है कि भगवान के शरण में जाओ। क्या आप किसी लाइट को, एक ट्यूबलाइट को उपासना कर सकते हैं? किसी टंगस्टन लाइट को उपासना कर सकते हैं आप? उपासना करते हैं एक व्यक्ति की, क्या प्रेम हो सकता है किसी ट्यूबलाइट से, नहीं तो मर्करी बल्ब से, नहीं तो सूर्य से, कुछ प्रेम हो सकता है? प्रेम हो सकता है किसी व्यक्ति से? प्रेम के लिए दो लोगों की जरूरत है, किसी अगर दो लोगों के बीच में प्रेम है तो इस तरह प्रभु जी ने समझाया उन लोगों को। और वो लोगों ने बोला ये क्या है, वो राधाकृष्ण का बोल रहे हैं, ऐसे भारत में अनेक स्वामियां हैं, दूसरे स्वामियों ने भी दिया है कि ऐसे ही निराकार के बारे में बताया है। तो प्रभु ने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सब नॉनसेंस है, बोला प्रभु ने, वो सब लोग बदमाशी किया है, वो सब लोगों ने क्या किया है, ये गलतफहमी को इस तरह फैला दिया है लोगों के बीच में, इसलिए लोग ये शास्त्र को त्याग कर लोग क्या है भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं लोग, यही कारण है। क्योंकि अनेक कथा कथित साधु लोगों ने इस तरह का गलत चीज़ों को सिखाया है लोगों को, ऐसे बोला उन्होंने। इसलिए प्रभु ने बोला भगवद गीता यथारूप मैंने लिखा, प्रभु ने बोला। तो वो व्यक्ति वो भी उत्तेजित हो गया, वो बोलने लगा प्रभु जी को, क्या स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि आपके ही भगवद गीता सही है, दूसरे स्वामियों का भगवद गीता सही नहीं है, आपको समदर्शी होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए, वाई से बोलने लगा। उसने बोला कि आप तो साधु हैं, किसी को निंदा नहीं करना चाहिए आपको, सबको प्रशंसा करना चाहिए, सब जीवों को एक समान देखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, प्रभुपाद ने बोला मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं सबको समदर्शी से देख सकूँ, आप जैसे आप इतने बड़े हैं आप समदर्शी देख सकते, मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ इसलिए मैं भेदभाव करता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको वापस चैलेंज किया उनको, अगर आप समदर्शी हो तो मेरे में क्यों दोष देख रहे हो तुम? आपको अगर वो व्यक्ति और मेरे बीच में आपको दोष भेदभाव नहीं देखना चाहिए, एक समान देखना चाहिए, ऐसे बोला प्रभुपाद ने, उसको चैलेंज किया, क्योंकि आप मेरे में दोष देख रहे हो, आप भी समदर्शी नहीं हो, ऐसे बोला। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, देखिए अगर कोई खूनी व्यक्ति है तो हमें उसको बोलना पड़ेगा कि तुम खूनी हो। जो व्यक्ति सज्जन है, सज्जन को सज्जन बोलना पड़ेगा, खूनी को खून बोलना पड़ेगा। इस तरह मैं जो आप में दोष देख रहा हूँ, वो दोष सही दोष से मैं देख रहा हूँ, ऐसे बोला उसने। तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं तुमको मालूम नहीं भगवद्गीता का तत्व। भगवद्गीता भगवान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शी। तो प्रभुपाद ने, समदर्शी का मतलब क्या है, तुमको एक ब्राह्मण को और कुत्ते को एक समान देखना चाहिए। इसका मतलब है तुमको एक खूनी व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को और सज्जन ब्राह्मण को, दोनों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए आत्मा के स्तर पर। क्या तुम देख सकते हो, ऐसे पूछा प्रभुपाद ने उसको। तो वह व्यक्ति आर्ग्यू किया कि ये खूनी व्यक्ति और सज्जन ब्राह्मण कैसे एक समान हो सकते हैं, शायद शास्त्र में लोगों ने बहुत गलती कर दिया है, ऐसे बोला वो व्यक्ति ने। प्रभुपाद ने देखा, देखो पहले तुमने मेरे में गलती देखा, अभी तुम वेद व्यास में गलती देख रहे हो, चले जाओ इधर से, ऐसे बोला प्रभुपाद ने उसको। तो दूसरे गेस्ट लोग थे, वो लोग बोल रहे थे, नहीं नहीं स्वामी जी आपको समदर्शी होना चाहिए, वापिस वही पागेंटू पकड़ रहे थे वो। प्रभुपाद ने बोला, देखो क्योंकि आप लोग कृष्ण की निंदा कर रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सब बदमाश हो, क्योंकि आप कृष्ण की निंदा कर रहे हो। कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो ज्ञान देता हूँ शास्त्र में, उसी ज्ञान को तुम दोहराओ बस, और मेरा योग्यता क्या है, मैं समदर्शी हूँ या समदर्शी नहीं हो वो बात को छोड़ दो, मैं कृष्ण ने जो बोला शास्त्र में वही मैं वापस दोहराता हूँ, दूसरा मैं बोलता नहीं हूँ, यही मेरा योग्यता है, प्रभुपाद ने बोला। तो वो लोगों ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी आप तो बोल रहे हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापन किया है, आप तो इतने बड़े आदमी हैं आप, लेकिन आपका योगदान क्या है, अगर आपने पूर्व आचार्यों के वही ज्ञान को दोहराए हैं तो आपका स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, रिपीट करना बच्चे जैसे, एक तोते जैसे, किसी ने बोला है उसी चीज को सुनकर रिपीट करो, आपका बड़ा योगदान क्या है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो मैं किस तरह का समदर्शी हूँ, मैं देखता नहीं हूँ कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन कृष्ण है, कौन भारतवासी है, कौन विदेशी है, कौन ब्लेच है, कौन चांडाल है, ये नहीं देखता मैं, सब लोगों को एक समान एक ही दृष्टि से मैंने भगवद्गीता का ज्ञान उत्तीर्ण किया है, इसलिए मैं समदर्शी हूँ, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसके पहले अनेक लोग आए हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आप लोग सोचते हैं कि ये भगवद्गीता का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और आप कृष्ण लोगों को कृष्ण सोच रहे हो, मुसलमानों को मुसलमान सोच रहे हो, आप इस तरह पक्षपात करते हो, मैं ये पक्षपात नहीं करता, मैं सब लोगों को समान रूप से दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसलिए मैं समदर्शी हूँ, समझो, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। तो इस तरह की वार्तालाप से हम क्या समझते हैं, हालांकि प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए थे इन लोगों से, ये कभी कभी हम प्रभुपाद जी को देखते हैं कि मायावादियों को खंडन करते हुए, पहली बार पाश्चात्य देश में भक्तों के बीच में एक बात चल रहा था, ऐसे हमारे हरे कृष्ण भक्त लोग बाहर गए थे, कोई मायावादी लोग फ्लायर्स का मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट वो दे रहे थे लोगों को, हमारे भक्तों को भी मिल गया कुछ एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने भी ले लिया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में क्या है, मायावाद का एडवर्टाइजमेंट था वो आप भगवान बन सकते हो, मैं भगवान हूँ, सब भगवान है, इस तरह का कुछ था। तो भक्त लोग आकर प्रभा जी को बोला कि प्रभा जी ये लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए ऐसे कुछ बोला उन्होंने, प्रभा जी तुरंत उत्तेजित हो गए, दे आर मायावादी, ऐसे बोला प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद के आंख बबूले हो गए, प्रभुपाद जी आंख लाल लाल हो गए, और टेबल के ऊपर धाड़ ऐसे प्रभुपाद ने मारा ऐसे। तो उसको देखकर शिष्य लोग डर गए, तो वो लोगों ने सोचा कि भारत में कोई प्रभुपाद जी के दुश्मन है, उसका नाम है मायावादी, ऐसे उन्होंने सोचा, और उस दुश्मन के बारे में कभी याद मत दिलाओ प्रभुपाद जी को, ऐसे वो सोच रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोग बहुत मासूम हो, आपको मालूम नहीं कि मायावादी लोग कौन है, आपको मालूम नहीं, मायावादी कृष्ण अपराधी, ऐसे बताया गया शास्त्र में, ये मायावादी व्यक्ति कौन है, वो कृष्ण को घृणा करते हैं, इसलिए ये लोग जो हैं, जब तात्पर्य वगैरह लिखते हैं भगवद गीता के, उसमें जब भगवान बोलते हैं भक्तिमय जीवन के बारे में, उसको छुपा कर क्या करते हैं, निराकार के बारे में बताते हैं लोगों को ऐसे, ये मायावादी है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जब भगवद्गीता की ज्ञान दी, तभी अर्जुन को भगवान ने बोला, हे अर्जुन मेरे गुणों के बारे में तुमको मैं बता रहा हूँ, मेरे विभूतियों के बारे में बोलता हूँ तुमको, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भावना नहीं है। जब मेरे यश के बारे में बोलूँगा तुमको, तुम ईर्ष्या नहीं करोगे मेरे ऊपर, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे बारे में बोल सकता हूँ आसानी से तुमको। इस दुनिया में हर एक जीव दूसरे जीव से ईर्ष्या करता है, हर एक जीव नेता बनना चाहता है। हाँ, और उस नेता बनने का जो स्पर्धा में अंत में जीव अपने आप को घोषणा करता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसे अनेक तुच्छ जीव हैं जो अपने को घोषणा करते हैं मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सब भगवान, ऐसे अनेक साधु पुरुष हैं भारत में जो अपने को भगवान घोषित करके अपने शिष्यों से पूजा स्वीकारते हैं, ऐसे स्त्रियों का शोषण करते हैं, लोगों के पैसा का शोषण करते हैं, अपने को भगवान घोषणा करके लोगों को। तो प्रभा जी इन लोगों को बहुत जोर से खंडन करते थे ऐसे, तो साफ साफ प्रभा जी बोलते थे सत्य को। तो भक्त को सत्य बोलने के लिए डरना नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोगों को बहुत प्रेम से समझाते हैं लेकिन लोग समझते नहीं, लेकिन ये मायावाद की जब सवाल आता है, हमें सीधा साधा लोगों को समझाना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाना चाहिए लोगों को, जैसे प्रभा जी ने किया इधर, ये लोगों को समझाया उन्होंने। तो प्रभा जी अनेक बार हम देखते हैं, प्रभा जी ने बताया कि भारतवासियों के लिए दो बड़े दुश्मन हैं, दो क्या है, एक है मायावाद और दूसरा है भौतिकतावाद, ये दो चीज है जिसके कारण सारे भारत के जन जो हैं, अगर कोई धार्मिक लोग भी बन जाए लेकिन वह आध्यात्म को गंभीरता से लेते नहीं हैं। अनेक भारतवासी आजकल भी इच्छा करते हैं कि मंदिर में जाए, थोड़ा भगवान को 1 रुपया 2 रुपया डाले हुंडी में, थोड़ा किसी शुभ दिन में थोड़ा दर्शन करके आए भगवान की, अगर बच्चा पैदा हो तो बच्चे के साथ मंदिर जाकर आए, अगर शादी हुआ ठीक है मंदिर में जाकर आए, लोग ये सब करते हैं लेकिन अपने हृदय भगवान को नहीं देते हैं, ये बड़ा समस्या है। क्योंकि भगवान बताते हैं भगवद गीता में, धार्मिक बनना बड़ी बात नहीं है लेकिन भगवान के भक्त बनना बड़ी बात है। जैसे ये समझना बहुत आसान है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के घर में अगर माँ बाप हैं उनकी बेटी का शादी करते हैं तो कितना उनका हृदय उसमें लगाए रहता है, आप देख सकते हैं बेटी को बड़ा करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो उम्र आ गया उसका भी 20-22 हो गया, अभी शादी करने के लिए उसके लिए एक लड़का देख रहे हैं, तो माँ बाप इतना अपने सब रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं, लेटर लिखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, हमेशा उनका मन, सोते समय भी उनको सपना आता है इसको शादी फिक्स हो जाए, नहीं तो फिक्स हो गया आई से सपना आता है, तो इतना वो मन लगा कर करते हैं। शादी फिक्स होने के बाद क्या करते हैं, शादी के लिए तैयारियाँ करते हैं, मार्केट में जाकर साड़ियाँ खरीदना है, सोने गहने खरीदना है, और तैयारी करना है, ये इन्विटेशन छापना है, अब लोगों के पास जाकर देना, हर एक रिश्तेदार को, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को छोड़ दिया तो भूल से छोड़ दिया तो अपराध हो जाएगा, है ना, वो भूलेंगे नहीं जीवन भर, है ना, इसलिए सबको देना चाहिए, दूर दूर देश में जाकर देकर आते हैं। कभी कभी तो पिताजी जो होते हैं, धूप कड़ी होता है, सनस्ट्रोक भी आ जाएगा, उसमें जाकर रिश्तेदारों को मिलकर वो क्या करते हैं, इन्विटेशन देकर आते हैं, है ना, सबको। और जब शादी निकट आ जाता है, एक हफ्ता है, तो लोग कभी कभी 15-20 दिन छुट्टी भी ले लेते हैं शादी के पहले, है ना, 20 दिन पहले 20 दिन बाद छुट्टी भी ले लेते हैं, पूरा मन लगाकर समय लगाकर सजाना और सब कुछ कर, और शादी का दिन आ जाता है, एक दिन पहले नींद नहीं आता उनको, है ना, तो इतना टेंशन को बढ़ जाता है, बड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उनको शादी के दिन, तो माता पिता इतना चिंता रहता है कि लास्ट मिनट तक शादी हो जाना चाहिए, है कुछ रुकना नहीं चाहिए, कभी कभी रुक जाता है ना, एंगेजमेंट हो जाता है उसके बाद रुक जाता है कभी, है ना, उसके बाद कभी कभी शादी के दिन सुबह सुबह पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है, स्त्री में पुरुष में कुछ प्रॉब्लम है, रुक जाता है, इसलिए लास्ट मिनट तक क्या है, वो क्षण जब आता है, जब मंगल सूत्र को लड़का स्त्री को पहनाता है, उस समय तक अभी दक्षिण भारत में क्या करते हैं, उधर ये बजाते हैं, बड़ा मेड़म बोलते हैं उसको, डुमटक 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 ऐसे बजाते हैं जोर से, और ये भी बजाते हैं पे 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 पे, वो भी जोर इतना जोर से बजा देते हैं, अगर कुछ मालूम भी हो गया कुछ गलती, अगर बोले भी क्या करते हैं, किसी को सुनाई नहीं देगा, उसका दबा दो और शादी करवा दो। और मैंने खुद देखा है शादी के बाद सब लोग वो माता पिता के हैंडशेक करते हैं, कर दिया आपने हो गया, क्यों बोला है उनको, उसके बाद जितने 15-20 दिन थे श्वास को पकड़ कर रखा था उसको, तभी लेते हैं श्वास लेते हैं। देखिए इतना हम ये जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हैं, भगवान बोलते हैं कि इस तरह का जिम्मेदारी मेरे सेवा में लो, ऐसे बोलते हैं भगवान। क्या हम भगवान की जिम्मेदारी ऐसे लेते हैं अपने जीवन में? कभी कभी अगर हम किसी को सेवा के लिए बुलाते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको कोई नहीं मिला तो मुझे बुलाइए, लास्ट में मैं हूँ, तभी आप मुझे बुला सकते हैं, ऐसे हैं। और वह भी आधा मन के साथ करते हैं वो भी, है ना। हाँ तो हमें देखना चाहिए कि कैसे कितना हम भगवान की सेवा को अपने घर की सेवा के घर के काम के समान हम कैसे लेते हैं। जैसे भारत में अगर किसी को बेटे हो, बेटे को पढ़ाई करना, उसको 10वीं कक्षा तक लेके आते हैं, 12वीं कक्षा तक, उसके बाद इंजीनियरिंग में घुसा देना उसको कैसे किसी न किसी तरह से है। अगर उसको सीट नहीं मिला, मेरिट से नहीं मिला, तो इधर उधर लोन लेकर 5 लाख 10 लाख लेकर उसको कुछ कैपिटेशन फी देकर मैनेजमेंट कोटा में क्या है उसको किसी न किसी तरह उसको इंजीनियर बना दो, फॉरेन भेजो उसको। ये है लोगों, माँ बाप इतना कठोर परिश्रम करते हैं, तो भगवान के लिए हम इतना जिम्मेदारी नहीं लेते हैं भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था में ये सिखाया हमें कि धर्म जो है कुछ कथाकथित धर्म नहीं करना चाहिए हमें, कुछ नाम के वास्ते धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म को ऐसे करना चाहिए। अभी कृष्ण भावनामृत संघ के सही भक्त जो होते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, उनका मन हमेशा एकदम फिक्स होकर रहना चाहिए गोलोक धाम में, भगवान राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की गुणगान, उसमें हमेशा मन को फिक्स रहना चाहिए। उनको उनको समझना चाहिए कि फर्स्ट हमारे प्रायोरिटी में फर्स्ट क्या है, भगवान की कृष्ण भक्ति है। और बाद में ठीक है मैं धंधा भी करता हूँ, थोड़ा पैसा भी कमा लेता हूँ, हम हमको परिवार भी चलना चलना वो भी चलाते हैं, वो सब भी हम करेंगे, लेकिन प्रथम हमारे मन में लक्ष्य क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान का स्मरण, भगवान की धाम लौटना, ये सब चीज़ जो है इसको प्रथम इम्पॉर्टेंस है, ये प्रधानता है ना, प्रधानता हमें देना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो ये हम तब देंगे जब हमें सही जानकारी है। जैसे मैं बता रहा था प्रभुपाद जी, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम तो उत्तेजित होते ही नहीं, अगर कोई मायावादी को भी हम देखते हैं हम उत्तेजित होते नहीं, हम सोचते हैं कि शायद हम बहुत प्रगतिशील हो गए, है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव उत्तेजित नहीं होता है उससे उसका मतलब है कि वो बद्धावस्था में है। अगर कोई भगवान के विरुद्ध कोई अपमान करता है, हम उत्तेजित होते नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारे भगवान के ऊपर प्रेम उतना ज़्यादा नहीं है, है ना। उदाहरण के लिए अगर आपके माँ बाप को कोई गाली दे, आप उत्तेजित होंगे कि नहीं? भारत में आप देख सकते हैं इस तरह का झगड़ा होता है दो लड़कों के बीच में, कभी किसी ने गाली दे दिया किसी माँ को बाप को, तुरंत वो कॉलर पकड़ता है, लाफा देता है, लाफ मारता है ना, सब कुछ करता है ना, क्रोधित हो जाते हैं लोग, दांत तोड़ देता है ना, सब कर देते हैं ऐसे। लेकिन हमारे परम माता पिता कौन है, राधा कृष्ण है ना। अगर उनके बारे में कोई निंदा करे, वो बोले कि उनके आंख नहीं है, उनके कान नहीं है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं, कोई बोलेगा, हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम, हम हंस रहे हैं, क्या हम किस तरह के वैष्णव हैं। तो लोगों को सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए हमें। तो इतने मायावादी हैं भारत में, वो लोग वो भी बोलते हैं कि हम धर्म करते हैं, लेकिन ये क्या धर्म कर रहे हैं, ये कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म है। इस तरह मैंने बोला आपको दूसरा चीज़ क्या है, भौतिकता। आधुनिक दुनिया में लोगों को, खास करके भारतवासियों को सबसे बहुत आकर्षित चीज़ क्या है, ये वैज्ञानिकों ने जो दिया है, ये ऐश्वर्य, सुविधाएं, सुख सुविधाएं, जैसे हमारे पास मोबाइल है, टेलीविजन है, एयर कंडीशन है, सुंदर कार है, बड़े बड़े मकान हैं, इस तरह की चीज़ों को देखकर ये तुच्छ जीव जो है वो प्रभावित हो जाता है, सोचता है कि ये क्या कितना सुविधा दिया है वैज्ञानिकों ने, बुद्धिमान लोग हैं, इस तरह हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने रिसेंटली एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया था पुणे में, उसको मिलने के लिए, हमारे नए मंदिर के बारे में बोलने के लिए। तो वो बोल रहा था, क्या है भारतवासी, ये लोग तो गांव में रहते हैं ज़्यादातर, हमारे लोग प्रगति नहीं करते हैं। मैंने पूछा, प्रगति का मतलब क्या है? बाबा जी बोलते हैं, प्रगति का मतलब यह है कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाओ, इतना धुआं निकालो जिससे लोग साफ हवा को
दम घुट के मर जाएंगे
बोलते हैं। स्वच्छ शुद्ध पानी नहीं है, स्वच्छ हवा नहीं है, और जो भोजन भी, जो धान्य वगैरह हम खाते हैं आजकल, इतना फर्टिलाइजर लगा है जिसके कारण उसमें शक्ति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे ग्लास बनते हैं आजकल, आप देखते हैं 4 उम्र का 5 उम्र का बच्चे ग्लास बनते हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें शक्ति नहीं है उसमें। तो मैंने बोला, ये क्या प्रगति है? तो एक प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी, मॉडर्न साइंटिस्ट हैव मेड सच अ ग्रेट प्रोग्रेस विद बिग बिग इंडस्ट्रीज। प्रभुपाद ने बोला, यस दे आर ब्रेवली गोइंग टू हेल। प्रभुपाद ने बोला, हाँ वो बहुत
बहादुरी से नरक
की ओर जा रहे हैं वो। अच्छा बोला उन्होंने। तो प्रभुपाद जी कभी भी आकर्षित नहीं हुए ये आधुनिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखकर। क्यों? क्योंकि वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव, वो देख सकता है कि ये बद्ध जीव इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। इस दुनिया में देखिए, इस दुनिया में क्या है, जीव है और भौतिक तत्व है और ईश्वर है, भगवान है। और ये जीव क्या करता है, भौतिक चीज़ों को लेकर, पदार्थों को लेकर क्या कर रहा है, ये उसको मैनिपुलेट,
उसके अंदर तोड़ मरोड़ रहा है,
तोड़ मरोड़ कर
उसको, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
हाँ, भौतिक पदार्थों को लेकर क्या करता है बद्ध जीव, अपने सुख सुविधाओं को क्या करता है, तैयारी करता है वो, है ना, इस तरह। तो प्रभुपाद ने बोला कि इसमें बड़ा गलत क्या है, जीव सोचता है कि ये मैं भौतिक पदार्थों को लेकर मैं उनको तोड़ मोड़ कर जो भी कन्हा करके मैं अपने इंद्रियों की भोग के लिए लगाऊंगा, इस तरह वो सोचता है। और ईश्वर को भूल जाता है वो, उसका संबंध जो है ईश्वर से, उसको भूल जाता है। ये आधुनिक प्रगति का बहुत बड़ा अभिशाप क्या है, हम जितना आगे प्रगति हम करते हैं उतना हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे आप देखिए तो पुणे में शॉपिंग मॉल है बड़ा, है ये बड़ा शॉपिंग मॉल है। अभी ये शॉपिंग मॉल का क्या प्रॉब्लम है, आप देखेंगे शॉपिंग मॉल के साथ साथ उधर गंदे गंदे तस्वीरों को लगाते हैं स्त्रियों का, है ना, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा बड़ा शॉपिंग मॉल बनाकर एक सुंदर सुंदर कृष्ण के 10 अवतारों का तस्वीर क्यों ना लगाए, वो लगाएंगे नहीं। क्यों? जब बड़ा शॉपिंग मॉल बनाते हैं तो इस तरह के भगवान भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम। तो जयदेव स्वामी आए थे पुणे में, किसी ने पूछा है भोग ऐश्वर्य के बारे में, ये भोग और ऐश्वर्य में क्या फर्क है महाराज? तो महाराज बता रहे थे, भोग का मतलब है मैथुन जीवन, उन्होंने बोला, और ऐश्वर्य का मतलब है बड़ी चीज, बड़ा शॉपिंग मॉल है, बड़ा कार है, बहुत बड़ा घर है, ये ऐश्वर्य है। तो इन चीज़ों से ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे जब बड़ा शॉपिंग मॉल बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं ईश्वर बन गया हूँ अभी, तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ क्या है, मैथुन जीवन भी जुड़ा है। तो इस तरह के तस्वीरों को लगाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, तुच्छ जीव जो सोचता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। जैसे मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में इधर से अमेरिका के किसी आदमी को हम बुला सकते हैं मोबाइल से, है ना, नहीं तो मोबाइल लेकर फ़ैन को ऑन कर सकते हैं, एक रिमोट कंट्रोल लेकर, है ना, रिमोट कंट्रोल लेकर टेलीविज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल लेकर ट्यूबलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से एयर कंडीशनर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि देखो मेरे हाथ में सब कुछ है, इसका मतलब है सब कुछ कंट्रोल नियंत्रण किसके पास है, ईश्वर के पास नहीं लेकिन मेरे पास है, इस तरह हम सोच बैठते हैं। और जीव बहुत गर्वित हो जाता है, हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस किया है। तो हम कर किसी के एक वैद्य के घर में हम गए थे कल, तो देखा कि वो वैद्य इतना पूजा पाठ कर रहे थे, वो लगभग 3-4 घंटा पूजा पाठ करता है वो सुबह 8 से 12 तक। तो हम 12 बजे के निकट गए तो पूजा पाठ उसने अंत किया, तो मेरे साथ बात करने के लिए बैठा, तो देखा कि उसके पौत्री, पौत्री बोलते हैं उसको, पौत्री मतलब उसके बेटे के बेटी, वो आई, वो जीन्स पहनकर टी शर्ट पहनकर आई वो अंदर। तो मैंने बोला इसको मंदिर में भेजो, उधर स्त्रियों का प्रोग्राम होता है तो अटेंड कर सकती है। तो उसने विनती किया उसको, जाओ। वो बोला नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो आदमी बोल रहा था कि इस तरह ये आधुनिक ज़माना है, ये बच्चे लोग जो हैं वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, टेलीविज़न खेलते हैं, इस तरह के जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, क्या किया जाए। तो मैं तो जो करना है मैं इसे पूजा पाठ वगैरह करता हूँ, इधर बोल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी ये जो प्रगति है उसके साथ साथ नास्तिकता भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और अनेक माँ बाप खुद हरे कृष्ण भक्त होते हैं, वो माला भी करते होते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ही अंदर थोड़ा इच्छा है कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारा बेटा अमेरिका जाए। ये दूसरे दीक्षित भक्तों के हृदय में भी इस तरह की इच्छा हो सकता है, क्योंकि ये भौतिक दुनिया का प्रभाव इतना प्रबल है इस दुनिया में। हम भक्ति में थोड़ा प्रगति करने के बाद भी इच्छा में छूटता नहीं हमारे मन से है। तो हालांकि बोलते हैं कभी कभी माँ बाप हरे कृष्ण मंदिर के मंदिर में आने वाले माँ बाप बच्चे को बोलते हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए भी माला करेंगे, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करके अमेरिका जाओ, हम क्या करेंगे, हम माला करेंगे। तो अमेरिका जाकर क्या करते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं उधर उधर, कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर पैसा चाहिए तो जाकर कार को भी धोते हैं, कार को धोते हैं, सड़क में जाकर सड़क के काम करते हैं और पैसे कमाकर पढ़ाई के लिए वो खर्चा करते हैं इससे। तो प्रभा जी जब गए अमेरिका, लोगों ने पूछा उनको किस लिए आए हो, प्रभा ने बोला मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको देने भीख देने के लिए आया हूँ, ऐसे बोला उन्होंने, क्योंकि आप लोगों के पास इतना तकनीकी प्रगति है लेकिन कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इतना प्रगति करने के बाद भी आप लोगों के मन का शांति नहीं है, आत्मा का आनंद मालूम नहीं है आपको, और आप लोग इस तरह आत्महत्या करते हो, डाइवोर्स करते हो, इस तरह के तरह तरह के तकलीफ में फंसे हुए हो आप लोग, आप लोगों को दिव्य ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ, ऐसे प्रभा ने बोला। तो प्रभा जी बताते थे गिव गॉड द नोबल प्राइज, ऐसे बोलते थे, क्या है नोबल प्राइज जो है वो भगवान को दो, ऐसे बोला प्रभा जी ने, साइंटिस्ट को मत दो। क्यों? आप बोलेंगे अरे वैज्ञानिक लोगों ने इतना चमत्कार किया है, उनको देना चाहिए, भगवान को क्यों दे। तो इसके संबंध में प्रभा जी लिखते हैं, आपको मालूम है आपने पढ़ा होगा कृष्णा बुक में भागवत में ये जाम्बवान की कथा आता है, तो श्यामतक मणि का, उस कथा में ऐसे आता है कि पहले पहले जब ये श्यामतक मणि प्राप्त हुआ था किसको, सत्राजित को, तो सत्राजित को जब प्राप्त हुआ वो अपने गले में उसको पहनकर वो ऐसे चल रहा था वो द्वारका में। तो उस समय द्वारका के सब प्रजा उसको देखकर जाकर उन्होंने बताया कृष्ण को, हे कृष्ण लगता है कि हमें सूर्य देवता खुद आ गए इधर आपको मिलने के लिए। तो भगवान ने बोला ये सूर्य देवता नहीं है, ये हमारा ही एक प्रजा व्यक्ति है। तो सत्राजित गया, लेकिन ऐसे बताया गया शास्त्र में अगर आपको कुछ भी संपत्ति प्राप्त हो उसको राजा को देना चाहिए, अगर भूमि को आप खोदते हैं अगर सोना चांदी मिल जाए तो क्या करना चाहिए, राजा के पास जाकर देना चाहिए। लेकिन सत्राजित क्या किया, वो दिया नहीं, सीधा गया और वो अपने गले के अंदर गया, अपने घर में चला गया, वो कृष्ण के पास जाकर नहीं दिया। तो कृष्ण ने उसको एक संदेश भेजा, सत्राजित ये जो तुमको प्राप्त हुआ है इसको तुमको क्या करना चाहिए, राजा उग्रसेन को बेंट के रूप में देना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि जो भी बेस्ट चीज तुमको मिलता है उसको क्या करना चाहिए, राजा को देना चाहिए। तो लेके आओ उसको। तो भगवान के संदेश प्राप्त होने के बावजूद भी सत्राजित ने चुपचाप रह गया, वो गया नहीं, क्योंकि उसको उसको लोभ भावना थी कि मैं ही रखूंगा इसको, और उसको पूजा करके उससे जो पैदा होने वाले 170 पाउंड का जो सोना पैदा होता था रोज उसको वो इकट्ठा करते गया, वो लोभ बन गया, लोभी बन गया वो। तो एक दिन सत्राजित के भाई जो प्रसेन वो एक घोड़े के ऊपर सवार करके वो ऐसे घूम रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मैं ये श्यामतक मणि को पहन लूँ, मेरे गले में वो पहन लिया उसने लोगों को दिखावा करने के लिए। ऐसे जाते जाते वो भूल से क्या किया, वो जंगल के अंदर चला गया। वो तो जंगल में एक सिंह आया, शेर आकर वो मार डाला, घोड़े को भी मारा, प्रसन्न को भी मारा। वो तो बाद में सत्रजीत बहुत चिंतित हो गया, किधर गया मेरा भाई पता नहीं। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर वो श्यामदक मणि को ले लिया, इस तरह का अफवाह फैलाने लगा वो। देखिए लोग क्या करते हैं, जब सोना चांदी पैसा मिलता है उसको इकट्ठा करके भगवान को भूल जाते हैं लोग। भगवान बोलते हैं शास्त्र में मुझे अर्पण करो, लेकिन अर्पण नहीं करते हैं लोग, खुद ही रखते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के आदेश को पालन नहीं करते हैं। लेकिन अगर सोना चांदी चोरी हो जाता है तो लोग तुरंत भगवान को हाथ दिखाते हैं और भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, है ना। इस तरह आरोप लगाया किसने, सत्रजीत ने। ऐसे तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि राजा के ऊपर किसी भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, इसलिए वो दोष को निवारण करने के लिए, निकालने के लिए भगवान ने क्या किया, जंगल गए भगवान। तो देखा उन्होंने प्रसेन मरकर गिरा था, घोड़े भी गिरा था उधर। तो उन्होंने समझा कि एक शेर ने लेके गया वो श्यामदक मणि ये गुफा के अंदर। गुफा के अंदर गए तो उधर शेर भी मर गया था वो, शेर भी मरा हुआ था और श्यामदक मणि नहीं था उधर। तो भगवान उस गुफा के अंदर 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 चले गए तो अंत में उनको पता चला उधर जाम्बवान का घर था वो, बहुत बड़ा महल था। उस महल में एक दासी थी और वो दासी के सामने एक छोटा बच्चा था और बच्चा सो रहा था, लेकिन बच्चा के हाथ में क्या था, श्यामदक मणि था, इसे हाथ में वो खेल रहा था इसे। तो भगवान ने जब देखा वो दासी डर गई कि भगवान ले लेंगे करके, वो रोने लगी। तुरंत जाम्बवान आ गया उधर। आपको मालूम है जाम्बवान कौन है, मालूम है आपको जाम्बवान कौन है? जाम्बवान राम की महान भक्त है, राम अवतार में आता है, अभी कृष्ण अवतार में भी आता है वही जाम्बवान। तो जाम्बवान आ गया, लेकिन वो क्रोधित आंखों से देखा भगवान को, समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। उसने सोचा कि ये मेरा वैरी है और ये श्यामदक मणि को लेने के लिए आया है। तो झगड़ा के लिए तैयार हो गया, तुरंत भगवान के हाथ में गदा दे दिया, अपने हाथ में गदा ले लिया, दोनों झगड़ा करने लगे हैं, लड़ाई शुरू हो गया। इस तरह का लड़ाई शुरू हुआ, लगभग 28 दिन लड़ाई चलते रहा, ऐसे दिन रात चलते रहा। तो उसके बाद दोनों मल्लयुद्ध करने लगे, गदे टूटने के बाद दोनों हाथ हाथ से हाथ मिलाकर इतने मल्लयुद्ध किया। तो भगवान ने ऐसे पिटाई किया इसको, जाम्बवान को, उसको सारे नस नस में नस नस दुखने लगे, इतना इतना वो शिथिल हो गया उसका शरीर, इतना कमजोर हो गया वो। तो उसको खुद आश्चर्य हुआ कि ये कौन है व्यक्ति, इस दुनिया में कोई नहीं मुझे पराजित करने के लिए, इतना मैं कैसे इतना कमजोर बन गया हूँ मैं। तभी भगवान की ओर मुड़कर देखा उसने, तुरंत उसको दिव्य ज्ञान उदय हो गया उसके हृदय में। उसने बोला भगवान को, हे भगवान, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हो, अभी आप दूसरे रूप में आए हो, कृष्ण के रूप में, क्योंकि मैंने देखा है भगवान रामचंद्र की पराक्रमता और उनकी शक्ति मैंने देखा है। क्योंकि जब उन्होंने समुद्र की ओर देखा तो सारे समुद्र उबलने लगा, गर्म गर्म बहुत गर्म होकर, और समुद्र उनको बीच में स्टार्टेड गिविंग हिम वे,
रास्ता दिया,
हाँ रास्ता देने लगा। इतना शक्ति था भगवान रामचंद्र का, अभी वही शक्ति मैं आप में देख रहा हूँ, और मुझे पराजित करने के लिए कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि आपने मुझे पराजित किया इसलिए आप कौन हो, आप रामचंद्र ही होना चाहिए। ऐसे उन्होंने भगवान का गुणगान किया और उनके गुणगान में ये जाम्बवान ने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोला, जिसके संबंध में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला, हे भगवान, इस भौतिक दुनिया के 8 तत्व जो है ना, भूमि रापो अनल वायु कम मनह बुद्धि अहंकार, है ना, ये 8 तत्व को आपने ही सृष्टि किया है, इसलिए आपसे ही आते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला कि इस भौतिक दुनिया के सब नियम जो होते हैं, उदाहरण के लिए लॉ ग्रेविटेशन, अगर हम किसी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है ना, उसको क्या बोलते हैं,
गुरुत्वाकर्षण,
गुरुत्वाकर्षण। इस तरह अनेक फिजिकल लॉस, केमिकल लॉस, मैथमेटिकल लॉस, थर्मोडायनेमिक लॉस, ऐसे अनेक नियम होते हैं। ये सब विधियों को किसने बनाए हैं, भगवान आपने बनाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो मोबाइल होता है ना, इधर से अगर मैं अमेरिका में किसी के साथ में बात कर रहा हूँ, इधर से ये बात करने का शक्ति कैसे आता है मोबाइल में, इधर से वेव्स जाते हैं सैटेलाइट में, है ना, और सैटेलाइट से उस व्यक्ति के पास जाते हैं। अभी हम लोगों ने सैटेलाइट रखा है, लेकिन इधर का संदेश सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कुछ वेव्स, एएम वेव्स, एफएम वेव्स, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स, ये सब वेव किसने बनाए हैं? पॉजिटिव रेस, नेगेटिव रेस, पॉजिटिव रेस, गामा रेस, बीटा रेस, अल्फा रेस, कौन बनाया? एक्स रे, ये सब भगवान ने बनाया है, ऐसे बोला उसने है। अगर इस तरह का रेस अगर संदेश को लेकर नहीं जाएगा तो एक मोबाइल जो है ये बच्चों के खिलौने के समान हो जाएगा वो है, इससे ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए पापा ने क्या बोला? गिव गॉड द नोबल प्राइज, ऐसे बोला पापा ने, क्योंकि भगवान ने ये लॉस को बनाए हैं। व्हाट इज द लॉस?
सिद्धांत
है,
सिद्धांत
नॉट सिद्धांत,
सिद्धांत
नियम, नियम बोलते हैं उसका। नियमों को भगवान ने बनाया है, वो नियम होने के कारण ये सब काम कर रहा है। अभी ये काम कर रहा है, फैन कैसे काम करता है? इसके पीछे मर्म क्या है? क्या कुछ चमत्कार किया है साइंटिस्ट लोगों ने? कुछ मंत्र डाला इसके ऊपर? ये कैसे घूमता है इसे? हाँ, क्या है मर्म? क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ये नियम किसने बनाया? साइंटिस्ट ने बनाया? भगवान ने बनाए हैं। मैंने किसी क्लासरूम में पूछा, ये गुरुत्व आकर्षण को किसने बनाया है? किसने बोला? न्यूटन ने बनाया। इतना बड़ा मूर्ख दे गया ना, क्या न्यूटन ने बनाया? तो न्यूटन ने उसको क्या किया? डिस्कवर किया। व्हाट इज इट? डिस्कवर,
खोजा।
हाँ, खोजा किया। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है इसे। अगर भगवान सब सारे दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को छीन लेंगे भगवान, इलेक्ट्रिसिटी नाम के जो कॉन्सेप्ट उसको निकालेंगे भगवान, तो लाइट नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरह भगवान ने पदार्थों को भी बनाए हैं, और पदार्थों के पीछे जो नियम है उन नियमों को भी भगवान ने बनाए हैं। और जाम्बवान ने बोला उनको, हे भगवान, आपने सब वैज्ञानिकों को मस्तिष्क भी दिया है आपने, जो मस्तिष्क बोलते हैं ना, ब्रेन, मस्तिष्क भी आपने दिया है, और हाथ पैर दिया है, अवयव दिया है, कान नाक सब दिया है, आंख सब दिया है आपने, जिसके कारण लोग क्या कर सकते हैं? इन पदार्थों को नियमों को लेकर जोड़कर कुछ आविष्कार कर सकते हैं। और वो आविष्कार करने के लिए भी बुद्धिमत्ता किसने दिया है? आपने ही दिया है। इसलिए आप ही सब साइंटिस्टों के साइंटिस्ट हो, साइंटिस्टों को भी आप ही सृष्टिकर्ता हो, ऐसे बोला जाम्बवान ने उनको। तो इसलिए ये बात को जो समझता है वो साइंटिस्ट लोगों के आविष्कारों से वो प्रभावित नहीं होता ऐसे व्यक्ति। प्रभुपाद जी कैसे देखते थे साइंटिस्ट लोगों को? वो बच्चों के समान देखते थे। वो बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं, खिलौनों को लेकर वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं ना। इस तरह पापा जी सोचते थे कि ये भौतिक पदार्थों को लेकर वैज्ञानिक लोग जो खेलते हैं, तरह तरह के आविष्कारों को करते हैं, और इस भौतिक दुनिया में क्या है, भटक जाते हैं, है ना। इसलिए उनको बच्चों के समान देख रहे थे प्रभुपाद जी। कभी कभी आप प्रभुपाद की किताबों में आपको देखने को मिलेगा, प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोगों को क्या बोलते हैं? रास्कल बोलते हैं। आप कितने लोगों ने पढ़ा है रास्कल? पढ़ा है ना, आपको मालूम है। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी क्यों ऐसे वैज्ञानिकों को रास्कल बोलते हैं? प्रभुपाद जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी को ऐसे बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए। जैसे शुरुआत में हमने बोला ना, स्वामी जी को क्रोध नहीं आना चाहिए, बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। अनेक लोग प्रश्न आपको पूछेंगे किताबों में क्यों रास्कल ऐसे वगैरह बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण क्या है? इस दुनिया के सब जीव, जैसे हम सब लोग हैं, हम सब कौन हैं? हम कृष्ण के बच्चे हैं। अगर कोई बहुत धनी खानदान से पैदा हुआ कोई बच्चा है, जैसे टाटा बिरला के कोई बच्चा है, अगर कोई व्यक्ति उस बच्चे को किडनैप करता है, किडनैप मतलब आपको
अपहरण, अपहरण,
हाँ अपहरण करता है। आजकल भी करते हैं, मालूम है आपको? बच्चों को अपहरण करके माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं, मालूम है आपको? इतना पैसा लेके आओ, 5 लाख लेके आओ उधर स्टेशन के पास, उसके बाद आपका बच्चा मिलेगा आपको, है ना। इस तरह की चीज़ें करते हैं ना। इस तरह वैज्ञानिक लोग क्या क्या कृष्ण के बच्चों को अपहरण कर लिया है उन्होंने। कैसे? अगर समझिए, अगर आपके किसी के बच्चा है, उसके शरीर में आपने अच्छे अच्छे सोना चांदी के आभूषण पाना है आपने, हा? कोई चोर आता है, वो क्या करता है? वो बच्चे को बोलता है बच्चा इधर आओ, तो उसको खाने के लिए एक लॉलीपॉप दे देता है हाथ में। तो बच्चा लॉलीपॉप लेता है, और लॉलीपॉप खाते खाते क्या करता है? बच्चे के शरीर में जब गहने हैं उसको सब चुराई कर लेता है, सोना चांदी। तो लॉलीपॉप कितना है? 1 रुपये का है, और सोना चांदी कितना? 10,000 रुपये का है। वो क्या करता है? 1 रुपये का लॉलीपॉप देकर 10,000 का सोना चांदी चोरी कर लेता है। ऐसे चोर, ऐसे नास्तिक वैज्ञानिक लोग भी बड़े चोर हैं। क्यों चोर हैं? क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान के ऊपर श्रद्धा और भक्ति है, हर एक जीव के हृदय में, और खास करके भारतवासियों के हृदय में तो भक्ति भावना और भगवान के ऊपर श्रद्धा बहुत है। वो किसके समान है? वो सोना चांदी के समान है। लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, वो छोटे छोटे आविष्कारों को देखकर, देखो मोबाइल देते हैं आपको, आप टेलीविजन ले लो, मोबाइल ले लो, एक वीडियो गेम्स ले लो, एक कार ले लो, ये सब छोटे मोटे यंत्रों को दिखाकर वो क्या करते हैं, आपके अंदर जो श्रद्धा जो है उसको छीन लेते हैं। और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि भगवान को छोड़ दो, हमारे ऊपर श्रद्धा रखो, हम तुम्हारे भगवान हैं, हम आपको सब प्रदान करेंगे, भगवान के पास मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, भगवान का भक्ति मत करो, हम जैसे नास्तिक बनो और हमारे कंट्रोल में रहो, ऐसे बोलते हैं। कौन? नास्तिक वैज्ञानिक लोग। इस तरह जीवों के हृदय में जो श्रद्धा है उसको चोरी करते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद जी देखते हैं कि सब जीव भगवान की धाम की ओर चलने के बदले वो उनको बहिर्मुख कराकर वो गलत दिशा में इस दुनिया में फंसाने वाले कौन हैं, ये नास्तिक वैज्ञानिक लोग हैं। और ये नास्तिक वैज्ञानिक लोग प्रभुपाद जी बताते हैं, ये ताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। ये भगवान खुद बोलते हैं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। भगवान बताते हैं ये नास्तिक वैज्ञानिक लोग आपको क्या बोलेंगे, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, इस दुनिया का कोई आधार नहीं है, ये दुनिया बिग बैंग से आ गया, ऐसे ही अचानक उत्पन्न हो गया ये दुनिया, ये बोलेंगे। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम, कुछ ईश्वर कंट्रोल में नहीं है। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मैं कंट्रोल करता हूँ दुनिया को, लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या बोलेंगे, कोई भगवान कंट्रोल में नहीं है, ऐसे बोलेंगे। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, ये दृष्टि को लेकर वो बोलेंगे जीवन का लक्ष्य है मैथुन जीवन, पैसा कमाओ और भोग करो, बस यही जीवन का लक्ष्य, ऐसे सब जीवों को सिखाएंगे, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों को पालन मत करो। भगवान खुद बोलते हैं ये ताम दृष्टि में अवष्टभ्य नष्ट आत्मानो, तुम्हारे आत्मा का नष्ट करेंगे वो, ऐसे बताते हैं। क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान के ऊपर श्रद्धा, ये आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन वैज्ञानिक क्या करेंगे, आत्मा का हा आत्मा हा बोलते हैं, आत्मा को मारने वाले हैं। उसके बाद आत्मा को भी मार नहीं सकता, लेकिन आत्मा को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, भटका देते हैं आत्मा को, ऐसे कर देते हैं। ये किसके समान है, अगर आप कोई राइस परिवार के धनी परिवार के बच्चे को आप घुमा देते हैं और आप उसको अपहरण करके लेके जाते हैं और अपने बाप माँ बाप से मिलने के लिए छोड़ते नहीं, ये कितना बड़ा अपराध है। अगर कोई सज्जन देखेगा तो तुरंत आपको पकड़ेगा, ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चे को क्यों अपहरण कर रहे हो, है ना। इस तरह प्रभुपाद जी जब ऐसे नास्तिक वैज्ञानिकों को देखते हैं वो सोचते हैं कि ये चोर हैं, क्षयाय जगतो अहिताः, अहिताः का मतलब है ये हित करने वाले नहीं है, ये हितकारक नहीं है, हानिकारक हैं। क्यों? बड़ा बड़ा बम तैयार करते हैं और उसको छोड़कर क्या करते हैं, करोड़ों लोगों को मार सकते हैं, जीवन नहीं दे सकते हैं, जीवन देने वाले तो भगवान हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ उनके जान ले सकते हैं वैज्ञानिक ये लोगों के, बस इस तरह हमारे मृत्यु जो है उसको स्पीड अप कर सकते हैं तेजी से, हैं बस यही कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों को नास्तिक लोगों को डांटते थे अपने प्रवचनों में, आप देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मूर्ख चीज़ों को जो वैज्ञानिक लोग सिखाते हैं क्या है, कि भौतिक पदार्थों से जीवन उत्पन्न होता है, इस तरह वैज्ञानिक लोग घोषणा करते हैं, और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, इस तरह बोलते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी अपनी किताब में सिखाते हैं किसी भी भौतिक पदार्थ से हम जीवन को पैदा नहीं कर सकते हैं, हमेशा हम देखते हैं जीवित व्यक्ति किधर से आता है, दूसरे जीवित व्यक्ति से ही आता है, जीवन का स्रोत जीवन, वो ऐसे कहा उन्होंने। और दूसरा है मृत्यु के बाद आत्मा जो है शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है अपने कर्मानुसार, अच्छे कर्म बुरे कर्म के अनुसार। तो इस तरह जो लोग गलत चीज़ों को सिखा रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको पहले, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि ये आधुनिक वैज्ञानिक लोग जो दे रहे हैं लालीपॉप, ये लालीपॉप की मिठास से हम मोहित हो जाते हैं, हम मदमत्त हो जाते हैं। इस तरह होकर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये भी लोग अच्छे हैं, इस तरह हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और भगवान की भक्ति में हम तीव्रता से आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो जो प्रभुपाद जी के अनुयायी होते हैं उनका कर्तव्य है प्रभुपाद की किताबों को अच्छी तरह पढ़कर इस तरह के नास्तिक वैज्ञानिकों को खंडन करना और सही सही तत्व को स्थापित करना और मायावादियों के गलत निर्विशेषवाद को खंडन करना, नास्तिकता को खंडन करना और सही जो भक्तिमय जीवन जो है इसको लोगों को सिखाना, ये हरेक प्रपद के अनुयायी का कर्तव्य है। इसलिए हम बोलते हैं निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, ये प्रपद के नाम में है। क्यों? क्योंकि प्रपद ये सबसे ज़्यादा करते थे इन दो चीज़ों से। और इस तरह उनके खंडन के द्वारा क्या हो गया, ये किसके समान है? देखिए सुबह अगर हम उठते हैं, अलार्म क्लॉक रखते हैं, है ना, अलार्म क्लॉक को बजाओ, अलार्म क्लॉक बजता है ना सुबह, तो हमें बहुत क्रोध आता है पहले, है ना, क्योंकि अलार्म क्लॉक आवाज बजता है, वो बजता है थोड़ा ना बंद कर देते हैं इसे, है ना, अभी 5 मिनट के बाद वापस बजता है वो, है ना। तो इस तरह जब सत्य बोला जाता है तभी लोगों को क्रोध आता है। जब मैंने पहले पढ़ा प्रभुपाद जी की किताब तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे रास्कल बोला, मैंने बहुत क्रोध हो गया, क्या है स्वामी जी वैज्ञानिकों को रास्कल बोलते हैं, क्योंकि मैंने सोचा मैं भी बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मुझे बोल रहे हैं रास्कल, है ऐसे हमने सोचा। इस तरह लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन लोगों को हमें समझाना चाहिए तुम्हारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी क्यों इस तरह के शब्द बोले, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शराबी है, वो शराब पिया है, उसको जाकर बहुत शांति से उपदेश दो, उसको वो शराबी के मदम क्या बोलते हैं मदमत अवस्था है ना,
नशे में,
नशे नशे से बाहर निकलना कठिन है। अगर उसको बोलोगे हे सज्जन घर आ जाओ, शांति से रहो, आराम करो, ऐसे बोलेंगे वो नशे से बाहर नहीं आएगा, उसको बड़ा ये एक लाफा मारना चाहिए उसको फाट, तो तुरंत बाहर निकलेगा, क्यों लाफा दिया मुझे, है ना, उसको लाफा देना होता है। इस तरह प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी के पहले एक बड़े स्वामी गए शिकागो में गए, उधर जाकर प्रवचन दिया उन्होंने, मेरे भाइयों मेरे बहनों ऐसे बोला, सब लोग उनके बहुत प्रशंसा करने लगे हैं। तो अमेरिकी लोगों ने उनको पूछा कि आपको वैज्ञानिक हमारा प्रगति हम कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना क्या है, उन्होंने बोला वंडरफुल, बहुत अच्छा वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हो, करते रहो ऐसे बोला उन्होंने। तो प्रभुपाद जी जब गए, वैज्ञानिक लोग प्रभुपाद जी को पूछे आपका सोचना क्या है अमेरिका के बारे में, आप प्रभुपाद ने कुछ काम का नहीं है, बोले प्रभुपाद जी क्या आप लोग मूर्ख हो, तो इसलिए मैं आपकी मूर्खता को निकालने के लिए आया हूँ, सीधा बोल। प्रभुपाद जी वॉज नेवर इम्प्रेस्ड विद अमेरिकन सिविलाइजेशन। तो ऐसे प्रभुपाद जी उनको नशे से बाहर निकाला, लोगों को निकाल कर उन्होंने ये दिव्य महामंत्र को उनके हृदय में स्थापित किया। क्योंकि हम सब लोग हम हृदय को देते हैं वैज्ञानिकों को, हम हृदय को देते हैं आधुनिक जीवन को, हम अपने हृदय को देते हैं किसी भी डोंगी साधु बाबा भी हो उसको, इसलिए प्रभुपाद जी ने हृदय में जो गलत चीज़ अपने हृदय के जो कुर्सी में, कुर्सी नहीं है सिंहासन में है, सिंहासन में जो हम गलत चीज़ों को बिठाया हमने उसको निकाल कर प्रभुपाद ने किसको बिठाया, कृष्ण के नाम को बिठाया प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद की चमत्कार है, बड़ी चमत्कार है प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि अगर ये महामंत्र को हम किसी को देते हैं वो महामंत्र से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उनको उनको जो भी चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा, उनको भौतिक चीज़ हो आध्यात्मिक चीज़ हो, अंतिम में भगवान अपने आप को दे देंगे, इस तरह का विश्वास था प्रभुपाद जी को। तो बम्बई में जुहू में एक मिस्टर सेठी नाम का एक लाइफ मेंबर आते थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। तो धीरे धीरे वो प्रभुपाद जी के बहुत महान भक्त बन गए, वो प्रभुपाद जी के इतने निकट भक्त बन गए वो। तो वो कैसे भक्त बने, वो प्रभुपाद जी को मिलने के पहले वो एक ग्रुप में थे, वो ग्रुप में लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे वो लोग। आजकल हम देखते हैं पुणे में भी अनेक रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, हमें अभी रिसेंटली हमारे वंशोधन प्रभु को एक ग्रुप मिला इसे, उसमें 15-20 लोग हैं, भागवत पढ़ते हैं वो लोग। तो उनके गुरु ने बोला कि भागवत ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो उनके स्वामी जी बहुत बूढ़े थे और वो अभी मर गए, वो चले गए वो। तो वो लोगों ने बोला कि इस्कॉन में आए इधर आकर, बोला आप लोग का क्या आकर हमको सिखा सकते हो भागवत। तो हमने तुरंत स्वीकार लिया। तो हमारे भक्त लोग अभी जा रहे हैं, उनका 15-20 लोगों का, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं और भागवत पढ़ते हैं वो लोग। तो हमारे लोग जाकर उनको भागवत सिखा रहे हैं। अगर आप में से इधर कोई हैं, आपको ऐसे रिलीजियस ग्रुप मालूम है तो मुझे मिल सकते हैं, हम अपने भक्तों को भेजेंगे मंदिर से प्रवचन देने के लिए। क्योंकि रेडीमेड ग्रुप ऐसे मिलते हैं पुणे में अनेक जगह, उनको मालूम नहीं है सत्य क्या है। ऐसे एक व्यक्ति था, साई नाम था उसका, ये साई बाबा नहीं दूसरा साई, वो उधर उधर का था, होनोलुलु, होनोलुलु वो हवाई के पास। तो उसका एक बड़ा ग्रुप था। एक बार हमारे हरे कृष्ण भक्त लोग जा रहे थे सड़क में ऐसे ही, तो 5 स्त्री पुरुष थे, वो सब लाल रंग के तिलक पहने थे, हमारे जैसे तिलक लेकिन लाल रंग का, जैसे कुमकुम से होता ना ऐसे पहने थे तिलक। तो हमारे हरे कृष्ण भक्त देखकर धड़ाक करके नीचे गिर पड़े वो लोग कीचड़ में, है दंड प्रणाम करने लगे। तो साई इनको सिखाता था कि वैष्णव को देखोगे तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए, तो कीचड़ में भी गिर जाते थे वो लोग, ऐसे प्रणाम करते थे। तो हमारे हरे कृष्ण भक्त ने मिला उनको, बात किया, खिताब दिया, और वो लोग ने बोला हमारे पास भी अनेक किताबें हैं। तो उनके लीडर को मिला उन्होंने, साई नाम का लीडर था, उन्होंने वो क्या कर रहा था, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़कर अपने लोगों को सिखा रहा था, लेकिन मालूम नहीं था उसको प्रभुपाद जी को किधर मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए मालूम नहीं था। तो हमारे हरे कृष्ण भक्त लोगों ने मिला वो साई से, तो साई बाद में प्रभुपाद जी के पास आया और दीक्षा ले लिया, उसका नाम बन गया सिद्ध स्वरूपानंदा, स्वामी बन गया वो। और उसके 50 के 50 शिष्य प्रभुपाद के शिष्य बन गए ऐसे। तो बाद में वो सब हमारे जैसे तिलक पाने लगे, कंठीमाला पाने लगे, सब अच्छे भक्त बन गए ऐसे। तो मैं क्यों बोला आपको, ऐसे पुणे में भी बड़ा ग्रुप हो सकता है कृष्ण की पूजा करने वाले, मानी कृष्ण के मंदिर हैं, आप लोग जाकर देखेंगे उधर बड़ा ग्रुप होता है। अगर उनको सही मार्गदर्शन नहीं है तो सब लोग इधर लेके आइए, इधर प्रभुपाद जी से हम जोड़ सकते हैं उनको। अनेक संस्थाएं हैं जो प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद जी की पूर्ण विश्वास थी, ये सेठी के बारे में बोल रहा था मैं, सेठी भी ऐसे ग्रुप के थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने ग्रुप को बुलाओ हमारे मंदिर में। वो लोग अखंड नाम करते थे, अखंड नाम सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक हरे कृष्ण कीर्तन करते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया था, तो जुहू मंदिर में आकर लगभग 100 लोग बैठकर वो हरे कृष्ण कीर्तन किया। तो प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में थे फाले माले में, वो नीचे नहीं आ पाए क्योंकि लिफ्ट नहीं काम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में प्रभुपाद आकर बीच में देखते थे वो लोग कीर्तन करते हुए। तो शाम को 6 बजे के बाद उनके ग्रुप में से एक बूढ़ी माता जी, वो 6 से 8 शाम को कीर्तन करते थे वो, ये वैष्णव सांग करते थे वो। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ऐसे गाया उन्होंने। तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू निकलने लगा और कुछ उस ग्रुप के 10-12 लोग जाकर प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद को धन्यवाद देने के लिए गए। तो प्रभुपाद ने बोला मैं आप लोगों से इतना खुश हूँ, आप सब लोग आ जाओ हमारे जुहू मंदिर में आकर रहो, आप हमारे प्रॉपर्टी में रहो, आपको कुछ वेतन देने की जरूरत नहीं है, आपको प्रसाद भी मिलेगा, आपको रहने का व्यवस्था भी मैं करूँगा, आपको एक ही कर्तव्य क्या है, दिन रात आप हरे कृष्ण जपते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी अगर किसी को हरे कृष्ण मंत्र दे देते तो कैसे देते थे, जैसे हम लोग किसी को विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, आप जाकर उस व्यक्ति से जाकर मिलो ऐसे। हाँ, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी का एड्रेस हमने दिया है, ये व्यक्ति जाकर उससे मिलेगा और उसको जो जरूरत है सब मिल जाएगा, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी माला दे देते किसी को, ले लो हरे कृष्ण जपो, इसका मतलब है मैं कृष्ण से इसको परिचित कर रहा हूँ, और कृष्ण को मिलने से, कृष्ण का नाम लेने से क्या होगा, इसको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के नाम लेने से हमें 4 चीज मिल जाते हैं, क्या है, पहले भक्तों का संग मिलता है हमें। कृष्ण का नाम आप करते रहिए, अगर आप भक्तों का भी मिला नहीं आपने अपने जीवन में, आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा। दूसरा, आपको भक्ति ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कृष्ण के नाम लेने से। और तीसरा है, दिव्य भक्तिमय सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और चौथा, आप तो भगवत धाम प्राप्त होगा। सो यू गेट 4 थिंग्स, एसोसिएशन ऑफ कृष्णा डिवोटीज, एंड सेकेंडली यू विल लर्न द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, एंड थर्डली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी चांस फॉर सर्विंग कृष्णा And fourthly, the highest goal of life, which is Krishna Prem. All four we will get. Practical udaharan kaun hai? Ajamil. Ajamil kitne bade mahan papi vyakti tha. Lekin ek hi baar usne bhagwan ka naam liya. Narayana, is naam liya usne. Narayana pukarne se turant kaun aage? Sir, Vishnudut aage. Tab bhaktan ka sang prapt ho gaya usko. Vishnudut aakar achhe upadesh dene lage, sadupadesh. Wo suna, pahli baar usne suna naam ki mahima. To तुरंत उसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान जागृत हो गया, और तीसरा क्या प्राप्त हुआ, और भगवान की सेवा प्राप्त हुआ, क्योंकि वो हरिद्वार चला गया, उधर जाकर 12 साल क्या करने लगा, भगवान का दिव्य नाम लेने लगा, और अंत में एक दिन उसने देखा वैकुंठ एयरप्लेन आ गया उधर उसको लेके जाने के लिए, तो वैकुंठ एयरप्लेन में बैठकर उस भगवत धाम की प्राप्ति हो गई उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि नाम के ऊपर भगवान ने बहुत जोर दिया ऐसे। तो हम लोग भी नाम लेते हैं रोज, हम जितना तीव्रता से ये भगवान के नामों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं उतना हमारा मन का शुद्धिकरण करेंगे भगवान। और इस तरह की सत्य के बारे में जो प्रभुपाद जी समझाते हैं वो सब हमें समझ में आएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रचार की ऊपर इतना जोर दिया है। आप लोग आते हैं संडे सुबह, हम सिर्फ काउंसलर काउंसलर्स को हम बुलाते हैं, लेकिन हमारे पुणे में, हमारे पुणे के कांग्रीगेशन लगभग 1000 कांग्रीगेशन है, उसमें सिर्फ 400-500 लोग सब सेवाओं में योगदान देते हैं, जैसे बड़े फेस्टिवल के समय योगदान। तो हमारी इच्छा है कि अभी बड़े मंदिर आने वाला है, बड़े मंदिर में हमारे जो कोर कांग्रीगेशन जो है 5000 होना चाहिए, 4-5000। तो कैसे इतना भक्तों का संख्या बढ़ेगा, जैसे प्रभा जी अकेले थे, अभी अमेरिका जाकर प्रभा ने एक मीटिंग में बोला कि मैं अकेले प्रचार करके मैं 10,000 लोगों को मेरा शिष्य बनाया, ऐसे बोला प्रभुपाद ने। अभी आप 10,000 भक्त क्या करो, एक एक व्यक्ति गुरु बनकर 10,000 शिष्यों को बनाओ, ऐसे बोला उन्होंने। तो कितना होता है वो 10,000 मल्टीप्लाई पे 10,000, कितना बड़े संख्या में हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये मायावाद, ये नास्तिकवाद, ये भौतिकवाद, इन चीज़ों का हम खंडन करें, इनको दूर करें, और कृष्ण की दिव्य सेवा, भक्तमय सेवा, और ये परम भक्ति के भक्ति से मिलने वाला जो आनंद जो है उसको हम सब लोगों को हम बांटें। और उसका उसमें प्रथम सीढ़ी क्या है, ये हरिनाम को बांटना। आपको जो भी लोग मालूम है, आपके रिश्तेदार हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले हो, आपको क्या करना चाहिए, पहला चीज़ जब आप उनको मिलते हैं प्रसाद दीजिए। जब प्रसाद खाते हैं थोड़ा उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, और तभी उनको प्रभुपाद की किताब दीजिए, वो लोग पढ़ कर आएंगे, प्रश्न पूछेंगे आपको, तभी माला दीजिए। और माला लेने से क्या होता है, धीरे 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 वो प्रगति करते हैं। तो अनेक भक्तों ने अपने ऑफिस के लोगों को भक्त बनाए हैं, ये बहुत कठिन बात नहीं है। और आप मंदिर में लेके आएंगे उनको, आजकल फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को इतने भीड़ आता है इधर, कभी कभी इतना भीड़ है मंदिर के हाल में बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मेरा विनती है कि आप जो इधर आते हैं संडे सुबह, हर एक भक्त इधर जो आए हैं आप लोग प्रयत्न करिए, आप कोशिश करिए दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए। आजकल आप लोग ईट के कलेक्शन के लिए भी जा रहे हैं लोगों को मिलने के लिए, एक ओर से कलेक्शन, दूसरी ओर से प्रचार, दोनों साथ साथ करने से हम प्रभुपाद जी ने जो दिव्य संदेश दिया है इतना अच्छी तरह अपनी किताबों में, उसको हम पहुंचा सकते हैं हजारों हजारों लाखों कोटानी कोटि लोगों के पास। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, और भक्तवृंद की।